نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. من كان يريد حرث الآخرة، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو، نزد له فی حرثی ہی، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کی کھیتی میں. حرث میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ حرث ہے انسان کا کسب، اس کی کمائی، اس کا بیج بونا، یعنی جو آخرت کے لیے بیج بوتا ہے اس کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہاں پہ اصل میں کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے حرث کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی جیسے سمجھ لیں کہ بیج بویا جاتا ہے نا تو فصل آتی ہے، تو انسان جب کوئی کمائی کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو اس عمل کی بھی فصل تیار ہوتی ہے. اسی فصل کو جو دنیا میں کاٹنا چاہتا ہے وہ دنیا میں کاٹ سکتا ہے، جو آخرت میں کاٹنا چاہتا ہے اس کو آخرت میں وہاں ملے گا. اسی لیے فرمایا ہوا من کان، اور جو کوئی ہے، یرید حرث دنیا، ارادہ رکھتا دنیا کی کھیتی کا، نوتی ہی منہا، ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے. وما لہ فی الآخرت من نصیب، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پھر جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھ کے یہاں پہ کچھ بوئے گا، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ بہت ہی اہم بات ہے، یعنی ہمارے تمام اعمال کا گھیرا کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے یہ آیت، کہ جو بھی انسان دنیا میں عمل کر رہا ہے اس کا صلہ وہ کس جگہ پہ چاہتا ہے، کیا وہ اس کا اجر دنیا میں لینا چاہتا ہے یا آخرت میں. جہاں پہ وہ لینا چاہتا ہے وہیں وہ بیج بو رہا ہے. جو آخرت میں لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں کیا فرمایا، نزد لہو، زیادہ کر دیں گے اس کو. دنیا کی کھیتی کو نہیں کہا کہ جو دنیا کی کھیتی کے لیے کرے گا ہم اس کی کھیتی کو زیادہ کر دیں گے، فرمایا جو آخرت کے لیے کرے گا ہم اس کی دنیا کی کھیتی میں، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. یعنی کیا مراد ہوئی، یعنی بہت بڑھا چڑھا کے اس کو اجر دیں گے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ بھی کہ دنیا میں بھی اس کو دے سکتے ہیں، دنیا کی بھی اس کی ضروریات میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو دیکھنا بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کام کر رہا ہے وہ کس کھیت میں اپنا بیج بونا چاہتا ہے، دنیا کے کھیت میں یا آخرت کے. اگر تو وہ آخرت کے کھیت میں بو دیتا ہے تو آخرت کے کھیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، اگر وہاں بونا چاہتے ہیں، ثواب کے لیے کیا جائے، جنت کے لیے کیا جائے، تبھی وہاں کے لیے کچھ اگ سکتا ہے. ورنہ انسان خواہ وہاں کتنے ہی بیج ڈالتا رہے وہ اگیں گے ہی نہیں، آخرت کی کھیتی تیار نہیں ہوگی. صرف کہنے سے کہ یہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، یہ میں دین کی خاطر کر رہی ہوں، یہ میں آخرت کی خاطر کر رہی ہوں، یہ میں ثواب کی خاطر، صرف بولنے سے نہیں بات بنے گی. واقعی آپ کے دل میں یہ بات ہے کیا، آپ کی نیت کیا ہے؟ اور آخرت کے کھیت سے باہر جو دانا جائے گا نا، اس کی فصل آخرت میں نہیں مل سکتی، وہ دنیا کے کھیت میں آپ نے بو دیا. اب بھلا دنیا کا کھیت کہاں رہ جائے گا جب ہم آخرت میں پہنچیں گے؟ وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، یہاں سے کیسے لے کر آئیں گے فصل؟ تو جو آخرت کی کھیت کے لیے اس کا پھل آخرت میں ملے گا، اور اس کا پھل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ جو کام جس مقصد کے لیے کیا جائے، جس نیت سے کیا جائے، اسی کے مطابق اس کا پھل ملے گا. اچھا آخرت کی دیکھیں یہ کتنی مزیدار بات ہے نا، کہ اس کی فصل انسان آخرت میں تو کاٹے گا ہی، مگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ان ایڈیشن بونس دے دیتے ہیں، فائدہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دنیا کے کھیت میں بویا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوتی ہی منہا، ہم دے دیں گے اس میں سے. उसमें से दे देते। ये नहीं है कि सारा का सारा जितना आपने चाहा, आपने जितनी मेहनत की उसके मुताबिक मिल जाएगा। जितना अल्लाह चाहता है, जितना अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिख दिया। आप देख लें, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हाथ पैर हिला रहे हैं, इस पर ये देखें कि मेरा अमल किस खेत में मैं बो रही हूँ। मेरा फलां काम दुनिया के खेत में चला रहा है या आखरत के? मैं जो अभी देख रही हूँ, ये दुनिया के खेत में बो रही हूँ या आखरत के? मैंने जो अभी अभी सुना है, ये दुनिया के खेत के लिए मैंने बोया है या आखरत के? जहाँ आप शऊरी तौर पर नीयत के साथ आखरत के लिए करेंगे, तो ज़रूर आप इंशाल्लाह उसकी फसल वहाँ काटेंगे। लेकिन अगर ऐसी नीयत नहीं की, देखिए नीयतें भी तो चार तरह की होती हैं। एक, कोई दुनिया के लिए नीयत करे, दूसरी आखरत के लिए नीयत करे, तीसरी कोई लोग लॉस्ट ही रहते ना, वो कहते हैं हमने तो कोई नीयत ही नहीं की, ना हमें कोई दुनिया का चाहिए, ना हमें कोई आखरत का चाहिए, हमने किसी वो बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ है, ना हमें कोई कभी नहीं चाहिए कुछ। हालांकि चाहना चाहिए आपको, कुछ तो चाहना चाहिए। जो चाहेंगे, जैसी नीयत करेंगे वही मिलेगा। किस खेत में बोना चाहते? वो कहते हैं हम कहीं का भी नहीं चाहते। चौथे लोग कहते हैं हम दोनों तरफ ही चाहते हैं, दुनिया में भी चाहते हैं, आखरत में भी चाहते हैं। अच्छा, अब आप देखें, जिसने दुनिया के लिए करा उसका तो यहाँ पे पता चल गया, अल्लाह ताला ने रिजल्ट सुना दिया, अल्लाह ताला देंगे जितना अल्लाह ने नसीब में लिख दिया। अगर आखरत के लिए किया तो अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखरत में भी देगा। जिसने दोनों जगह के लिए ही नहीं किया, नीयत ही नहीं की, इरादा ही नहीं किया, बिला इरादा बिला मकसद काम करते जा रहे हैं, या दिखावे के कर रहे हैं, या दुनियादारी निभाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रजा की नीयत नहीं है, तो वो सारे अमल बस दुनिया के खेत में ही बो दिए गए। इनका रिजल्ट फिर अल्लाह चाहे तो कुछ दुनिया में दे दे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आखरत में तो कुछ नहीं मिलने का। और जिसने दोनों तरफ की नीयत की है, तो अल्लाह ताला के लिए जो काम नहीं किया जाता ना, या अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर लिया जाता है, कि किसी और की खुशी के लिए भी कर लिया, अल्लाह की खुशी के लिए भी कर लिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपने शरीकों से बेनियाज हूँ, जाओ तुम उसी को जाके दे दो, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला उस काम को कबूल नहीं करते, ठीक है उसी से जाके सिला लो फिर, मुझे तो चाहिए ही नहीं, अल्लाह तो वैसे ही नहीं किसी का मोहताज। हज़रत अली फरमाते हैं कि दुनिया में दो तरह के अमल करने वाले होते हैं, एक वो जो दुनिया के लिए अमल करते हैं और आखरत से बेताल्लुक हो जाते हैं, अपने बाद वालों की मुफलिसी से डरते हैं, हाय अगर ना ये किया तो बाद वाले कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भूखे मरेंगे, और अपनी ज़िंदगी दूसरों के नफ़ा के लिए ख़त्म कर देते हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, इसको फ़ायदा पहुंचा दूं, उसको कर दूं, उसको कर दूं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरे वो जो दुनिया में आखरत के लिए अमल करते हैं, उनकी दुनियावी ज़रूरियात बग़ैर अमल के ही पूरी हो जाती हैं, अल्लाह पूरी करता है। वो एक साथ दोनों मज़े उठाते हैं, दोनों घरों के मालिक होते हैं, और अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़िज़ होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को ये कह दिया ना कि जो शख्स मेरी खिदमत करता है तू इसकी खिदमत कर, और जो तेरी खिदमत करता है तू उसको थका दे। वाकई ऐसे होता है कि इंसान जब दुनिया के पीछे इतना भागता है तो ये दुनिया इसको थका देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और उसकी मिसाल इसके पीछे भागने वाले की इस तरह दी कि जो शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है, अल्लाह ताला उसके मामलात को बखेर देते हैं उसके मामलात, यानी उसके मामलात सिमट के ही नहीं देते। वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, बावला हुआ फिर रहा है, कह रहा है पता नहीं कहाँ चला गया दिन, पता नहीं कहाँ चली गई जिंदगी, कुछ भी नहीं कमाया, और उसकी आंखों के सामने फख्र ले आते हैं। यानी वो हमेशा यही सोचता रहता है, हाय अगर मैंने ये ना किया तो मैं फकीर हो जाऊंगा, और तंगदस्ती कर देता है, यानी उसको परेशान रखता है। अल्लाह ताला दिल में परेशानी घबराहट डाल देता है उसके, वो हर वक्त ही घबराया रहता है। कितना घाटे का सौदा है ना, कि दुनिया में भी उसको चैन नहीं मिलता, और फरमाया कि उसको दुनिया से सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हिस्सा उसके लिए पहले से मुकद्दर कर दिया गया। और जो आखरत का कसद करता है, अल्लाह ताला उसके मामला को मुजतमे कर देता है, यानी उसके कामों को समेट देता है। देखिए, एक ये हो सकते हैं आपके काम, जैसे आपके काम बिखरे पड़े हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मुट्ठी है दानों की, अब मैं उसको बिखेर दूं, आप एक 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 दाने को चुनते रहें तो सारा दिन लग जाएगा। और दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि मैं वो मुट्ठी दानों की आपके हाथ में दे दूं, आपके लिए कितनी आसानी है ना। तो अल्लाह ताला इसी तरह बाज़ लोगों के मामलात को बिखेर देता है और बाज़ के मामलात को मुजतमे कर देता है। काम वही है दोनों के, लेकिन देखो कैसे अल्लाह ताला ने एक के लिए आसानी कर दी और एक के लिए कितनी मुश्किल है। आसानी उसके लिए की जिसने आखरत का कसद किया, और मुश्किल उसके लिए बिखरे उसके लिए जो दुनिया की फिक्र में रहता, बस हर वक्त उसको यही फिक्रें हैं, रात को भी, दिन को भी, सुबह को भी, शाम को भी, दिमाग पे यही चीज छाई हुई है। तो जो आखरत का कसद करता है, अल्लाह ताला उसके मामलात को समेट देते हैं और उसके दिल में गिना रख देता है, बेनियाजी, वो बेनियाज होता है। और दुनिया उसके पास जिल्लत के साथ पहुंच जाती है, जलील होके आ जाती है उसके पास। यानी दुनिया के लिए अमल करेगा तो दुनिया उसके आगे आगे भागेगी, और आखरत के लिए अमल करेगा तो दुनिया खुद ही उसके पीछे आ जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की यह हदीस है, कि जिस शख्स ने अपने तमाम अफकार को सिर्फ़ एक फ़िक्र बना दिया, और वो आखरत की फ़िक्र है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की फ़िक्र के लिए काफ़ी है। समझ आई बात? इसने सारी फ़िक्र से सारी फ़िक्रों को एक फ़िक्र बना दिया, और वो है आखरत की, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की फ़िक्रों के लिए काफ़ी है। और जिसकी अफकार दुनिया के हवाल में मशगूल रहें, हर वक्त दुनिया की ही फ़िक्रें करता रहे, तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं वो किस वादी में हलाक हो रहा है, वो जहाँ मर्जी जाए फिर। समझ आई बात? तो कितना ज़रूरी है कि इंसान अपनी फिक्रात को, बजाय कि हम दुनिया के पीछे ही लगा के इसमें ख्वार होते रहें, आखरत के लिए लगाएं, तो अल्लाह आपकी दुनिया की फ़िक्र करेगा, वो दुनिया के कामों को समेट लेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे दिल को मशगूलियात से भर दूंगा और तेरे फक्र को दूर नहीं करूंगा। तो इंसान को ये चाहिए कि वो आखरत के लिए ऐसे कोशिश करे जैसे कल मर जाना। कल मर जाना तो कितनी जल्दी जल्दी नेक नेक काम करने चाहिए, कितनी तेज़ अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए, और दुनिया के लिए ऐसे काम करे कि जैसे अभी अभी काफ़ी देर है, अभी इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी मुझे अगर मिली तो कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली परसों मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो आखरत के लिए अमल करने में ऐसे सोचे कि जल्दी करें, दुनिया का काम पीछे भी करना पड़े तो। लेकिन आप देखते हैं कि जिनकी नज़र आखरत के ऊपर होती है, वो अपने सारे कामों, अपनी सारी कोशिशों, अपनी सारी एनर्जी, सारा माल, वक्त, बेहतरीन अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम जो है ना, वो आखरत के लिए देते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसको दुनिया के लिए लगाते हैं। और जो दुनिया के पीछे ही भाग भाग के हलकान होते हैं, वो पहले दुनिया के सारे काम करेंगे, उसके सारे काम निपटाएंगे, जो बचा खुचा ज़िंदगी का वक्त रह गया वो कहते हैं अच्छा उसमें आखरत का भी कुछ काम कर लेंगे, उनकी ये थिंकिंग होती है। लेकिन जो इंसान की नीयत है उसके मुताबिक ही अजर। तो जिसने आखरत की नीयत कर ली, ये खेत की बात आपको समझ आ रही है? ये सारा दिन समझ लें हम बीज डाल रहे हैं, डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, इससे रिजल्ट्स में फर्क पड़ जाएगा, ये बस बात कही जा रही है। तो रिजल्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं? जो आपको मिलना है, जो फल मिलना है इस खेती का, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने बीज कहाँ डाला। इन्नमल आमालु बिन्नियात। और अक्सर हम बगैर नियत के ही काम करते जाते हैं। अगर नियत नहीं है ना, तो पता है काम कैसा है? एक जानवर का सोचें जो बगैर सर के हो, पूरा धाड़ है उसका लेकिन सर नहीं है, तो उसकी क्या आइडेंटिटी होगी? कुछ भी नहीं। इसी तरह अमल पूरे का पूरा मौजूद है, मगर उसमें नियत नहीं है ना, तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो अल्लाह की नज़र में, क्योंकि आपने नियत ही नहीं की। तो नियत करना इसलिए बेइंतहा ज़रूरी है कि इंसान इस नियत के वजह से बहुत सारी अजर कमा सकता है, और इसी नियत को बिगाड़ के बहुत घाटे का सौदा कर सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि आपको आखिरत में क्या मिलेगा, तो फिर ये देख लें कि आपकी नीयतें किधर की हैं। मसलन आप खाना खा रहे हैं, तो नीयत क्या है? दुनिया के खेत में आप बीज डाल रहे हैं या आखिरत के? हम कहते हैं हमने तो कोई नीयत ही नहीं की, बस ऐसे ही खा लिया। नीयत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोल के ही कहें कि मैं इसलिए खा रही हूँ। नीयत का मतलब ये है आपके दिल में ख्याल ज़रूर होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिल में ये हो कि ये इस वजह से मैं कर रही हूँ ये काम। अगर कुछ भी नहीं है, बस बैठे बैठे शुरू कर दिया, ज़हन हाजिर ही नहीं है, ना बिस्मिल्लाह कही है ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बस रोबोट की तरह आए मेज़ पे बैठे, खाना खाया, दिमाग कहीं और चल रहा था और उठ के चले गए, कब शुरू किया कब ख़त्म किया, क्या खाया क्या नहीं खाया कुछ पता ही नहीं है, तो बगैर सर वाला धाड़ा ही है वो। आखरत की खेती में तो नहीं गया फिर, चाहे और कहीं पे भी गया। और अगर अगर आप नियत ये कर लें कि इस खाने की वजह से भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, हाँ मैं इस खाने को इसलिए खा रही हूँ कि अल्लाह का जिक्र करूँ और उसका शुक्र अदा करूँ, उसने नेमत दी है उसकी नेमत को एंजॉय करूँ, फिर ये कि मेरे जिस्म का भी हक है अल्लाह ने रखा, मैं इसका हक अदा करूँ, और खाना खा के जो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं इससे ज़िंदगी कि मैं वो काम कर सकूंगी जो एनर्जी के बगैर नहीं हो सकते। कोई इबादत का काम है, कोई अल्लाह की फरमाबरदारी का काम है, कोई दूसरों को हेल्प करने का काम है, कोई हकूक व फराइज देने का काम है, ये सब उसी सूरत में हो सकते हैं ना जब मेरे जिस्म में ताकत हो, जब मैं भाग दौड़ कर सकूं। ताकत ही नहीं होगी तो कैसे भाग दौड़ कर सकूंगी? तो जितने नेकी के काम है, जितने अल्लाह की फरमाबरदारी के काम है, वो इस जिस्म से ही करने हैं ना, तो मैं इसको अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं खाना चाहती हूँ। जो मेरे पर अल्लाह ने जिम्मेदारियाँ रखी हैं उनको पूरा करूँगी, तो आपका खाना भी इबादत बन गया। देखें आप किस तरह से मुबाह कामों को भी, मुबाह काम वो है यानी जो आप दिन भर काम करते हैं, खाना पीना सोना वॉशरूम जाना, ये सब इन कामों को भी आप इबादत बना सकते अगर आपने नियत आखरत की कर ली तो। और ये एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है उन लोगों के लिए जो डिप्रेस रहते हैं। बताए कैसे? आखरत की नियत करने वाला बड़ा फ़ायदे में रहता है। आपने मसलन आखरत की नियत करके किसी से नेकी की या मसलन किसी का हक अदा किया, चाहे वो हस्बैंड हैं, बहन भाई हैं, कोई दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं, किसी के साथ आपने कोई भलाई की है। अब आपने नियत क्या की हुई है अगर कि ये इसका सिला मुझे आखरत में मिले, मैंने हक अदा किया ना इसका, मैं अल्लाह तुझसे आखरत में इसका बदला लेना चाहती हूँ। अब क्या होता है? अगर तो वो बंदा पलट के आपके साथ दुनिया में ही नेकी कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो दुनिया में भी आपको नेकी मिल गई, क्योंकि आखरत में तो मिलनी ही है, आपने तो आखरत का इरादा किया है ना, आपने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो भी मुझे कुछ दे, वो भी मेरे साथ ऐसा करे, वो भी मेरे साथ अच्छा ही उसको करना चाहिए, वो कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं भी करता तो आपका काम ज़ाया नहीं हुआ, उसका अजर आपको आखरत में मिल जाएगा, तो आप तो विन विन सिचुएशन में हो गए, चट भी मेरी पट भी मेरी। है ना। अब इसके बरक्स देख लें, वही काम आपने दुनिया की नीयत से किया, इन प्यारे रिश्तों के साथ या किसी अजनबी के साथ, किसी के साथ आपने दुनिया की नीयत से किया, कोई हमसाए हैं, कोई भी है, कोई ससुराली है, कुछ कोई भी बंदा, उसके साथ आपने दुनिया की नीयत से किया, कल को इनसे भी फायदा हो, कल को ये मेरे भी काम आए, कल को मेरी तारीफें करें, कल को लोगों को बताएंगे तो सही ना कि अच्छी थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर तो इनसे फायदा मिल गया तो वो भी लिमिटेड ही मिलेगा, 2 दिन का मिल जाएगा, जितनी दुनिया की जिंदगी है इसका मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ऐसा भी बहुत ज़्यादा चांस होता है जिसकी हम बहुत शिकायत करते हैं कि पलट के वो कुछ भी ना फायदा दें, कुछ भी ना फायदा दें, अक्सर ये होता है ना। तब क्या होता है, फिर हम बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत गमगीन होते हैं, और फिर हम कहते हैं, यह बात आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, हो सकता है कहीं भी हो, कि आजकल लोग बहुत मतलबी हैं, आजकल तो कोई अपना है ही नहीं, सारी दुनिया बस ये मतलब के हैं लोग। ये जुमले कितनी दफ़ा सुन चुके हैं ना, कभी गौर किया आपने, ऐसे जुमले हम क्यों कहते हैं? ये तभी कहते हैं जब पीछे जाके देखें तो हमने दुनिया में ही इनकी नियत की थी, दुनिया में ही ये की थी नियत कि इस इनका बदला, इसका अच्छाई, इसकी इस नेकी का जो भी सिला है वो मुझे यहीं मिल जाए। अब इसका एक्सपेक्टेड बदला मुझे मिला नहीं तो अब मैं डिप्रेस हो गई, गमज़दा रहने लगी कि मैंने तो इतना अच्छा किया था और मुझे तो इन रिटर्न कुछ मिला ही नहीं। तो जब भी दुनिया की नियत से कुछ भी किया होगा ना तो आप डिप्रेस ही रहेंगे, क्योंकि दूसरा इंसान भी कमज़ोर है, वो कभी भी आपको आपकी नेकी का पूरा पूरा बदला नहीं दे सकता, आपकी नेकी का बदला वो ही दे सकता है जिसके पास अनलिमिटेड है ना। इंसान तो बेचारे बहुत कमज़ोर है, इनके पास कितना कुछ है, वो क्या दे देंगे आपको? आप अपनी नेकी का जो डिमांड कर रही हैं बदला, वो तो उनके पास है ही नहीं, वो सिर्फ आपका रब ही आपको दे सकता है। ये गुर अगर ज़िंदगी में सीख लिया ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी, शिकवे शिकायतें नहीं रहेंगे, और आखरत के लिए अमल भी जमा होता जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना। वरना ये भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि कोई नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, कुरान भी पढ़ रहा है, लेकिन इन सब में से किसी का भी अजर उसको आखरत में ना मिले। वजह क्या, उसने आखरत के लिए किया ही नहीं, उसने दुनिया के लिए किया था कि दुनिया में लोग मुझे नमाजी कहें, दुनिया में लोग मुझे कुरान पढ़ने वाली कहें, मुझे नेक समझें कि मैं रोज़े भी रखती हूँ। तो जब ऐसा होगा तो फिर डिप्रेशन भी होगा, फिर शिकायतें भी होंगी, फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, फिर मूड ऑफ भी होंगे। आप बताएं कि जहाँ पे रिस्क है, आपने रिस्क लिया ना दुनिया के लिए करके, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, वो कि पता नहीं कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता, काम भी आपको उतना ही करना पड़ा, अब ये भी नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई फ़ायदा, क्यों ना आखरत के लिए करें, जहाँ पे गारंटीड है, नज़िद लहू फी हर्थी ही, ये कोई बंदा नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, हम देंगे उसको, हम ज़्यादा देंगे, एक करोगे तो 10, और हो सकता है 10 से भी आगे 700, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा, कि एक खजूर को वो जो सदका आदमी ने की होगी उसको अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के ओहद पहाड़ के बराबर कर देंगे। इंसान क़यामत के दिन देखेगा, सोचेगा ला मैंने तो इतना बड़ा अमल किया नहीं था, ये किस चीज़ की जजा है? तो कहा जाएगा वो जो एक खजूर थी तूने सदका की, वो ओहद पहाड़ के बराबर करती जाएगी। और हदीस में आता है अल्लाह ताला उसको पालेंगे, पालते हैं उसको, पालते हैं जैसे तुम अपने घोड़े के बच्चे को पालते हो, इसी तरह अल्लाह ताला उसको प्यार से पालते हैं और उसको इतना बड़ा करके देंगे उस दिन। वो दुनिया में ऐसे आपकी नेकी का ऐसी कदरदानी कर सकता है, ऐसा बदला दे सकता है? उतना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात आप समझते हैं कि चलो मैंने इतना किया था, इसने भी इतना दे दिया, उससे बढ़ के तो कम ही कोई होता है, शाज़ो नादिर ही कोई होता है कि किसी का इतना बड़ा ज़र्फ़ हो जाए कि वो दूसरे के लिए उससे भी बढ़ के करे। और अगर कहीं किसी के साथ लड़ाई हो गई तो फिर तो बिल्कुल ही गई आपकी नेकी, वो कहाँ से पलट के आएगा, अब तो उससे बोलचाल ही नहीं। और कई दुनिया में लोग फौत हो जाते हैं, अब आपने नेकी की थी, अब वो तो गई, वो तो बंदा फौत हो गया, आप कहाँ से लेंगे, तो घाटा ही घाटा है। और कहीं उसने दे भी दी तो कितनी दे देगा, क्या 10 गुना, क्या 700 गुना, क्या अनलिमिटेड, नहीं दे सकते वो। तो दुनिया के फायदे की ड्यूरेशन भी कम है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है, आखरत का फायदा सदाबहार है, लेकिन उसके लिए पूरे शऊर के साथ, पूरी नीयत के साथ आपको अमल करना होगा। अगर आपकी नीयत आखरत के लिए होगी ना, खुद ब खुद आप देखेंगे उस काम की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। और जितनी मजबूत और क्लियर आपकी नीयत होगी, उतना ही अच्छा आपको सिला मिलेगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है ना, कि नीयत के ऊपर भी आपको अजर मिल रहा है। और अगर कहीं नीयत बदल गई काम के दौरान, और बाद में अगर आपको एहसास हो रहा है, तो अब तौबा कर लें, नीयत को फिर से अपनी रिवाइज कर लें। और यकीन करें, जो काम आप शुरू करते हैं ना, नीयत को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि शैतान है ना हमारे साथ लगा हुआ। तो वो जो हमने अल्लाह की खातिर नीयत की होती है, वो जल्दी ही कहीं गुम हो जाती है, दब जाती है, कहीं भूल जाते हैं हम उसको, वो पीछे चली जाती है, बिहाइंड द सीन। और आगे क्या आ जाता है, आगे वो टेक ओवर कर लेती हैं नीयतें जो कि शैतानी होती हैं, दुनिया की होती हैं। तो जो अमल अल्लाह की खातिर नहीं किया या बगैर सोचे समझे किया, वो गफलत का अमल है। कई अमाल हम ग्लोरी के लिए भी नहीं कर रहे होते, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे, बस मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मज़ा तो आप ले ही सकते हैं, वो तो आपको आता ही रहेगा, लेकिन अगर नीयत अल्लाह की रज़ा कर ली, तो काम में की का अजर अल्लाह देगा। फिर देखिए, आप मल्टीपल नियतें भी कर सकते, बहुत सारी नियतें, एक ही काम की 2 से ज्यादा भी नियतें कर सकते, एक से ज्यादा भी कर सकते। आप मसलन कहीं जाती हैं, अब आप नियत कर लें, मैं वहां पे सिला रहमी भी करूंगी, ये एक सिला रहमी करने के लिए भी मैं जा रही हूँ कि रिश्ते जोड़ूंगी, फिर मैं वहां पे जो जिसके घर जाऊंगी उसके काम भी आऊंगी, थोड़ा उसका काम भी मैं भी हाथ बटा दूंगी, उसकी हेल्प भी कर दूंगी, और फिर मैं ये भी नियत कर लेती हूँ कि वहां पे कोई नेकी की बात भी कर दूंगी। और दूसरी हम नियत ये भी कर सकते हैं कि बस वहां पे मैं जा रही हूँ, खाना खाना है मैंने वहां पे, क्या खाना मिलेगा वहां पे, ये सोच के चलेगा, तो खाना तो खा ही लेंगे। तो जब सिर्फ खाने की नीयत से गए तो फिर बस खाना मिल गया, दैट्स इट। अल्लाह ताला कयामत के दिन कहेंगे, अगर आप उस मजलिस का अपना अजर मांगना चाहेंगे ना, तो अल्लाह ताला कहेंगे, मैंने तो तुम्हें दुनिया में दे दिया था, अब क्या मांगते हो, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने जो नीयत की थी, तुमने खाने की नीयत की थी, वहां जाऊंगी और मजे मजे खाने खाऊंगी, सहेलियों से बातें करूंगी, फन करूंगी, इंजॉय करूंगी, इंजॉय करने जा रही हूँ, तो घर में बैठ बैठ के तंग आ गई हूँ ना, इतने दिन से बाहर नहीं निकली, और कप सूट भी मैंने नया सिलवाया वो भी दिखा दूंगी, तो वो सब कुछ हो जाएगा, आपकी इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, आपका सूट भी लोग देख लेंगे, आपकी बातें भी हो जाएंगी, खाना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा आपको। कितनी दफा हम घर से बाहर कदम निकालते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम इससे आखिरत का भी कोई अजर ले सकते हैं, और बहुत बड़ा अजर ले सकते हैं। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 3 दिन तक आपने ये चेक करना है कि मेरे कितने घंटे कितने मिनट दुनिया के खेत में लग रहे हैं, और कितने घंटे कितने मिनट आखिरत के खेत में मैं लगा रही हूँ, वहाँ के लिए कुछ बो रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है आपको उसके लिए आखिरत के खेत में कुछ बोने के लिए मुसल्ले पे बैठना पड़े, आप हर घर के काम में भी ऐसी नियत करके, और नियत लेकिन सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि देखने वाले की नज़र बड़ी तेज़ है, वो दिलों के अंदर भी देख लेगा और वहां से भी निकाल के ले आएगा नियतों को। उसके साथ आप फ्रॉड की गेम नहीं खेल सकते, लोगों को तो दिखा दिखा के बता बता के बहुत कुछ अपने नेकी शो कर सकते हैं, अगर अल्लाह को हम बातों से राजी कर सकते होते तो फिर मामला बहुत ही आसान था, लेकिन उसको बातों से नहीं राजी किया जा सकता। तो ये देख ले कि अगर दुनिया के लिए किया तो घाटे का सौदा इसलिए है कि तकदीर के मुताबिक मिलना है। यानी जिसके लिए आप जवानी लगा दें, वक्त लगा दें, अपना पूरा अपनी सलाहियतें लगा रहे हैं, एंड रिजल्ट क्या है? बस सिर्फ इतना ही मिलेगा, बस दैट्स इट, क्योंकि तुम्हारी तकदीर में इतना ही लिखा था। ओ, हम आखरत के लिए इसलिए नहीं लगाते, कहते हाय फिर दुनिया में मेरा कुछ रह ना जाए, कमी ना रह जाए, दुनिया में भी मिल जाएगा, बस वक्त ही है, आप अपना वक्त लगाइए आखरत के लिए, आप देखेंगे आपको दुनिया में भी मिल जाएगा, आपका कोई काम रह नहीं जाएगा, किसी में नहीं कमी आएगी। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है ना, दुनिया के लिए उतना लगाओ जितना इसमें रहना है, और आखरत के लिए उतना लगाओ जितना वहां रहना है। अब खुद ही नोट कर लें कि कितना किस खेत के लिए लगाना चाहिए। तो हर काम करने से पहले सोचें क्यों कर रही हूं, क्यों जा रही हूं, क्यों पहन रही हूं, क्यों खा रही हूं, क्यों पका रही हूं, क्यों सफाई कर रही हूं। ठीक है, इब्ने अब्बास कहते हैं अपनी दुनिया को आखरत पर जो तरजीह देता है, आखरत में इसका कोई हिस्सा नहीं सिवाय आग के। तो ये ना सोचें कि चलो वहां पे कुछ नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ेगा, वहां पे के लिए अगर किसी ने नहीं अमल किया तो आग है उसके लिए। वहां का हिस्सा बगैर मेहनत के, बगैर तलब के, बगैर कोशिश के, बगैर नियत के नहीं मिलने वाला। ये ना सोचे खुद ब खुद मेरी नेकियां होती जा रही, नमाज भी पढ़े तो तब भी ये सोचे मैं क्यों पढ़ रही, किसी के डर की वजह से पढ़ रही कि उसने कह दिया वो पूछेगा, फलां पूछेगा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी या फलां देख रहा है या फलां लोग आए हुए मेरे घर में, फिर वो क्या कहेंगे, नमाज नहीं पढ़ती है। ये कहें कि मैं किस लिए पढ़ रही हूं, क्या है मेरा इससे मोटिव। तो जिसने आखरत का इरादा किया उसके लिए मेहनत की, और कितनी मेहनत करनी चाहिए उसके लिए, जैसा मेहनत करने का हक है उतनी भाग दौड़ करें, उतनी जद्दोजहद करें जितना वहां पे रहना, जैसी उसके लिए मेहनत होनी चाहिए।
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।